आप सबका राधा गोकुलानंद मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के 3 दिन कार्यक्रम के प्रथम दिन में स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आरंभ भजन से हुआ और फिर एक सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की मंदिर के बच्चों ने। इससे हमें सीखा कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उनके भक्त श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहते हैं। हमने देखा कि माधवेंद्र पुरी इतने शुद्ध भक्त थे कि जब उनके मन में विचार आया कि मुझे ये खीर चखना चाहिए, हालांकि उन्होंने ये इच्छा रखी थी इसलिए कि वृंदावन में जाकर वह गोपाल जी के लिए, जो उनके इष्ट देव, इनके पूजनीय आराध्य देव थे, उनके लिए खीर बनाए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया था कि भगवान को भोग अर्पण किए करने के पहले हमें उसको खाना नहीं चाहिए, यह तो दूर की बात है, लेकिन खाने के विचार भी नहीं करने चाहिए। इसलिए जब भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तो एक ऐसे स्थान में बनाया जाता है जहां अन्य लोग देख न सकें, और फिर जब भोग अर्पण किया जा रहा है और रसोई घर से भगवान के श्री विग्रह तक पहुंचाया जा रहा है तो ढक के लिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति उसे देखकर खाने की इच्छा न करे, क्योंकि भगवान को हम अच्छे अच्छे भोग खिलाते हैं तो स्वाभाविक है हमारे सामने हम खीर, रसगुल्ला, श्रीखंड, पूरी सब देखेंगे तो मन में इच्छा आएगी जल्दी से जल्दी भोग चढ़ जाए ताकि हम इस प्रसाद को ग्रहण करें, और खाने की इच्छा होती है मन में उस भोग को देखकर, तो इसलिए भोग को ढककर भगवान के पास लिया जाता है। तो माधवेंद्र पुरी को इतना बुरा लगा कि उस जगह को छोड़कर फिर वो चले गए, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने माधवेंद्र पुरी की इच्छा पूरी करके ही रखी। जो भी भक्त इच्छा करते हैं भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। 2-3 दिन पहले ही यही चर्चा हो रही थी कि इसलिए कृष्ण मंदिर में आके कोई इच्छा रखना ये कभी कभी खतरे की बात होती है, क्योंकि जो भी इच्छा करेंगे तो भगवान पूरी कर देंगे। आपने आकर सोचा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, इधर आ गए भगवान के सामने, सोचा मुझे 10 लाख चाहिए, शायद भगवान दे भी दें, लेकिन भगवान कहेंगे उसके बाद में जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक बार 10 लाख रुपए हाथ में आ गए फिर उसके बाद में आपका दिमाग कैसे विचलित हो जाएगा और उसके बाद में क्या तकलीफें आपको आएंगी, फिर भगवान कहेंगे मैं इनसे दूर हूं तो मुझे उसके बाद में नहीं पूछना। जैसे कि एक बार मार्कंडेय ऋषि नाम के साधु थे, बहुत दीर्घ आयुषी, बड़े तपस्वी, ब्रह्मचारी, और उनकी शुद्ध भक्ति से भगवान संकर्षण, उनके आराध्य देव, उनके सामने प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि हे मार्कंडेय, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति मैं कर दूंगा। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वैसे मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहिए क्योंकि मैं संतुष्ट हूं आपकी भक्ति में, लेकिन फिर भी एक हृदय में कौतूहल हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है, मुझे आपकी माया शक्ति देखनी है। तो उस समय भी भगवान हंसे, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे आई, और आचार्य बताते हैं कि इस मुस्कान का तात्पर्य यह है कि भगवान सोच रहे थे मन ही मन में, देखो मार्कंडेय, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हारी वाणी तो सच निकलनी ही है, और वो भी तुमने मुझसे मांगा है तो मैं तो पूरा करके ही रखूंगा। और तुमने चाहा है कि मेरी माया शक्ति का दर्शन करना चाहते हो, मेरे दर्शन से संतुष्ट नहीं हुए कि मेरे माया का दर्शन करना है। ठीक है, वो भी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन उसके बाद में क्या होगा फिर मुझसे शिकायत मत करना, फिर क्या होगा मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। भगवान ने ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन उनके हल्के से मुस्कान से यह संदेश हम सब तक पहुंच रहा है कि भगवान के सामने आकर केवल एक ही इच्छा रखनी चाहिए और वो है उनकी सेवा, बस। और कोई भी इच्छा हमारे हृदय में नहीं रखनी चाहिए, और है भी तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं कृपा करके निकाल दीजिए, क्योंकि ये इच्छाएं बहुत तीव्र हैं, और जब तक ये इच्छाएं हृदय में हैं मन की शांति हमें नहीं मिलेगी, ये सच्ची बात है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो लोग भोग करना चाहते हैं संसार का उनको भुक्ति कहते हैं, भुक्ति लोग। जो लोग संसार से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करके, और जो लोग योगाभ्यास करके अष्टांग योग पद्धति का पालन करके जो अणिमा लकीमा महिमा प्राप्ति इत्यादि ऐसे योग शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनके भी मन विचलित हो जाते हैं, कोई भी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि इन सब के हृदय में कोई न कोई कामना वासना अवश्य है। कामना या वासना का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के सेवा से भिन्न कोई भी इच्छा, बस। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी परिभाषा देते हैं ये काम वासना क्या है और प्रेम भक्ति क्या है। वो कहते हैं हमारी इंद्रियों की संतुष्टि करने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो उसको काम कहते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं अर्थात उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, ये काम ही है। केवल भगवान के चरण कमलों में जो सेवा प्रेम की भावना केंद्रित की जाती है वही एकमात्र प्रेम कहलाता है, अन्य वास्तव में जो भी कुछ है वो प्रेम नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि ने ऐसे सोचा और भगवान ने तथास्तु कह दिया, और उसके बाद में भगवान अदृश्य हुए, ओझल हुए और चले गए अपने धाम में। उधर मार्कंडेय ऋषि इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान माया मुझे दिखाएंगे, और अचानक सृष्टि के संहार के समय जैसे प्रलय होने लगा। प्रलय हुआ और पानी का बाढ़ बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि सारे पृथ्वी जो है पानी के नीचे आ गई। थोड़ा भी जमीन नहीं दिखाई पड़ रहा था, एक भी पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक भी पहाड़ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतना ऊंचा पानी आ गया, सब जगह जल ही जल। और इस जल में मार्कंडेय ऋषि तैरने लगे, और तो कोई उपाय था नहीं। तैरते तैरते हजारों हजारों साल बीत गए, मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु भी नहीं हुई, लेकिन वो किसी न किसी तरह से जीवित रहे। उस समय बहुत हजारों सालों के बाद में पानी में तैरते तैरते बहुत दूरी में उनको एक ऐसे दृश्य दिखा जो कि दूर से जमीन के तरह दिखाई पड़ रहा था। तो बहुत इच्छा जागृत हुई हृदय में कि इतने सालों के बाद जमीन दिखाई पड़ी है, चलो जाते हैं जमीन के पास। तेजी से तैरते तैरते उधर गए और वहां पर देखा जमीन नहीं है, वहां पर एक कमल पत्र है, और उस पत्र के ऊपर एक बालक है, और ये बालक बहुत सुंदर है। उसके शरीर की कांति बरसात के बादल के रंग की है, काले घुंघराले बाल हैं, बाल में मोर पंख है, आंखें कमल जैसे हैं, छोटे छोटे दांत मोतियों जैसे हैं, कानों में कुंडल है और छोटे छोटे एक पीतांबर पहने हुई है और अपने पैर के अंगूठी को चूस रहे हैं जैसे बच्चे अक्सर किया करते हैं। और जब मार्कंडेय ऋषि पास में आए तो मार्कंडेय ऋषि की ओर दृष्टि दिया उस बालक ने, और उस दृष्टि को देखकर मार्कंडेय ऋषि का हृदय भर गया प्रेम से। वो बालक इतना आकर्षक था कि मार्कंडेय ऋषि तुरंत उस बालक का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े पानी के भीतर, लेकिन जैसे पानी में उन्होंने छलांग लगाया उस बालक का आलिंगन करने के लिए, अचानक मार्कंडेय ऋषि ने अनुभव किया कि पानी से वो निकल गए हैं और छोटा सा रूप होकर वो भगवान के नसिकों से निकलकर अंदर चले गए हैं, उस बालक के शरीर के भीतर चले गए। मार्कंडेय ऋषि तो बड़े विस्मित हो गए कि अरे ये क्या हो गया। और अंदर उन्होंने क्या देखा, अंदर सारा ब्रह्मांड था, सारे 14 भुवन, सारे देवी देवता, काल कर्म सत्वगुण रजगुण तमोगुण सब कुछ उस ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहा था, और साथ साथ में अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नजर आ रहे थे। और मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि इस ब्रह्मांड के भीतर ये बालक पानी में तैर रहा है कमल पत्र के ऊपर। हरे कृष्ण। और खुद मार्कंडेय ऋषि उस बालक के भीतर अपने आप को भी देख रहे थे। तो मार्कंडेय ऋषि सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, मैं कहां हूं, क्या हो गया है मुझको, और ये बालक कौन है, ये क्या हो रहा है सब। उस समय अचानक जैसे उस बालक ने सांस लिया तो उस बालक के नसिकों से फिर से आके बाहर मार्कंडेय ऋषि बाहर आ गए। और उस समय तैर कर जब बाहर आ गए मार्कंडेय ऋषि तो उन्होंने देखा कि ये बालक वैसे का वैसे ही आराम से बैठा हुआ है और अचानक अदृश्य हो गया। और जैसे ही वो बालक अदृश्य हो गया तो मार्कंडेय ऋषि अचानक अपने ध्यान से जागे। वो पहले से अपने आश्रम में ही थे, अपने आश्रम में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। और फिर जब जागे तो उन्होंने सोचा और कभी नहीं माया, भगवान की माया शक्ति का दर्शन करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। हजारों हजारों साल जल में तैरना, बिना कोई जमीन देखे हुए, बिना कोई भोजन, बिना कोई जल, केवल पानी में तैरना। और अंत में वो समझ गए कि वो बालक कौन थे, कौन थे, क्या था उनका नाम, श्री कृष्ण बाल स्वरूप में। और अंगूठा क्यों चूस रहे थे पता है आपको, क्योंकि भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को बहुत चाहते हैं, हमेशा उनके चरण कमलों में निवास करने की इच्छा रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रार्थना की है कि हे प्रभु, किसी न किसी तरह से मुझे आपके चरण कमलों में एक रज बनने का स्थान या मौका दे दीजिए। तो भगवान के चरण कमल उगम स्थान है सारे भक्तों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी इस सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे चरण कमलों में क्या दिखता है मेरे भक्तों को, ये क्या है इसमें आकर्षक बात, खुद भगवान नहीं समझ पाते हैं कि इतना मीठा मेरे भक्तों को क्यों लगता है। भक्त लोग इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं कि मेरे चरण कमल मधु के समान है, अमृत के समान है, इससे प्राण मिलता है वगैरह वगैरह, इतने सब चीजें लिखते हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता मेरे अंगूठे में पैर के, तो मुझे कुछ चक्कर देखना पड़ेगा कि क्या अमृत मेरे चरण कमलों में है। लेकिन अंगूठा चखना चूसना ये एक बच्चा करता है, बड़ा आदमी कोई नहीं करता। अगर कोई बड़ा आदमी अपना अंगूठा चूसे तो लोग उसे पागल कहेंगे। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो अभी बड़ा हूं, बांसुरी बजाता हूं, गोपियों के साथ रासलीला करता हूं, और कभी कभी मैं द्वारकाधीश बनता हूं, द्वारका का राज करता हूं, मथुराधीश हूं, अभी मैं अंगूठा चूसूंगा तो बड़ा अजीब सा कुछ हो जाएगा, इसलिए बाल रूप में मुझे ये करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर बाल रूप धारण किया और बाल रूप में अपनी अंगूठा चूसने लगे कि मेरे अंगूठे में क्या है जो भक्त लोग इतना आकर्षित होते हैं ये जानने के लिए। और आज तक कृष्ण चूस रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या है, उनको भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं संसार में, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में सच्चा आनंद है। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में शांत हो सकता है और कोई भी नहीं शांत हो सकता। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुतुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्व अपि महामुने। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कोटि कोटि मुनि ऋषियों में से विरला ही कोई एक ऐसे व्यक्ति मिल जाएगा जो कि नारायण परायण है, जो श्री नारायण श्री हरि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना रखता है। सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, सुदुर्लभ मतलब बहुत बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? प्रशांत आत्मा, केवल शांत नहीं, प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत। तो प्रशांत मतलब बहुत पूरी तरह से संपूर्णता से शांत होते हैं हृदय में, क्योंकि इनके हृदय में कोई भी भौतिक कामना नहीं रहती, इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते हम। इच्छाएं तो जीव का स्वरूप है, लेकिन इन इच्छाओं को भगवान के ऊपर हमें केंद्रित करना है। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि इस प्रकार से वो भगवान की भक्तों की सेवा करने के इच्छुक रहते हैं। जैसे आज हमने माधवेंद्र पुरी के एक छोटी सी लघु नाटिका में देखी, स्वयं आए जो दूध देने के लिए आए थे माधवेंद्र पुरी को, खुद गोपाल जी थे, एक ग्वाल बाल का वेश पहनकर आए थे वहां पर। तो यही श्री कृष्ण परम भगवान है, देवकी पुत्र है, यशोदा नंदन नंद नंदन है, लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता गण भी इसको नहीं जानते। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि संशय न करो, मैं ही वो परम भगवान हूं। हालांकि मैं कभी कभी देवकी के गर्भ से जन्म लेता हूं, देवकी नंदन के नाम से जाने जाता हूं, कभी यशोदा नंदन, कभी द्वारकाधीश बनता हूं मैं, कभी माखन चुराता हूं, जो भी मैं करता हूं, लेकिन मैं हर अवस्था में परम भगवान ही रहता हूं। मेरे शक्ति का बुद्धि का घटन कभी नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बहुत पहले दिया था और अर्जुन को वे बताते हैं चौथे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। वो कहते हैं हे अर्जुन, तुमसे बहुत पहले ये ज्ञान गीता का मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और फिर विवस्वान ने उसके पुत्र मनु वैवस्वत मनु को दिया, और मनु ने उसके पुत्र इक्ष्वाकु राजा को दिया, और इस तरह से ये परंपरा में ज्ञान चलते आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन, लेकिन ये ज्ञान जो कि परंपरा में इस तरह से आ रहा था एक बार टूट गया, लुप्त हो गया। इसलिए स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातन भक्तों से मे सखा चेति रहस्यम ही एक उत्तमम। क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो गया, परंपरा टूट गई, इसलिए मैं इस परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा हूं हे अर्जुन, और मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम सही पात्र व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो, और तुम्हारी योग्यता क्या है कि तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। तो अर्जुन के मन में एक संशय आता है, क्योंकि जीव का स्वभाव होता है संशय, संशय करना। अभी जैसे हमने मार्कंडेय ऋषि की कथा बोली, हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में संशय हुआ होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे इंद्रियों से तो हम कभी देखते नहीं है। तो संशय एक असुर है जो कि हमारे हृदय में रहता है, और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान की तलवार से इस असुर को मारना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, कि आपका जन्म बाद में हुआ, विवस्वान का जन्म पहले हुआ, वो श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, और आप तो मेरे हम उम्र वाले हैं। क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे कि कृष्ण तो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, हम दोनों एक उम्र के हैं, और सूर्यदेव उनकी कितनी उम्र है, वो तो हजारों लाखों सालों से जीवित हैं, जब से ये ब्रह्मांड है तब से सूरज है, तो विवस्वान की उम्र क्या हुई होगी, और कृष्ण तो मेरे साथ के हैं, हम साथ में बड़े हुए खेले, तो कृष्ण भगवान तुमने कैसे विवस्वान को उपदेश दिया, जब तुम मेरे साथी हो और विवस्वान हमसे बहुत बड़ा है तो कैसे है। कथम एतद् विजानीयम्, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे संभव हुआ। तो उस समय कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परं तप। वो कहने लगे, हे अर्जुन, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, बहुनि में जन्म, हे अर्जुन तुमने और मैंने बहुत जन्म बिताए हैं, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए और मेरे भी बहुत जन्म हुए, लेकिन हमारे हम दोनों में अंतर क्या है। तान्यहम सर्व वेदानि, मुझे उन सारे जन्मों का स्मरण है, मैं कब कब ये पृथ्वी पे भौतिक ब्रह्मांड में आया, मैंने क्या क्या किया, मुझे सब याद है। न त्वम वित्थ, हे परंतप, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं मालूम क्योंकि तुम भूल चुके हो। ये भी बद्ध जीव का स्वभाव होता है, किसी भी जीव का। कई बार भक्त लोग पूछते हैं या कहते हैं कि हम कितना गीता भागवत पढ़ने का प्रयास करते हैं, श्लोक कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए। ये स्वाभाविक है भूलना, क्यों, विस्मृति क्यों होती है हमारे अंदर, क्योंकि हम शरीर बदलते रहते हैं, पिछले जन्म का हमें स्मरण नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें शरीर बदल दिया है, शरीर बदलने के साथ साथ हमारी स्मृति भी खो जाती है, और ये भौतिक शरीर ऐसा होता है कि इसको त्यागते समय इतना कष्ट होता है कि जो भी स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, और फिर अगले जन्म में पुनः नए जन्म का स्मरण आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन, क्योंकि तुम शरीर बदलते रहते हो और भौतिक शरीर मिलता है जीव को, इसलिए बद्ध जीव को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, मैं तुम जैसे नहीं हूं, मैं भगवान हूं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, कि मैं सर्व प्राणियों का प्रभु हूं और मैं अजह हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता और मेरा शरीर है अव्यय, अव्यय मतलब कभी भी क्षीण नहीं होने वाला, इसकी मृत्यु, इसका मृत्यु कभी नहीं होता है, और इसलिए मेरे अंतरंग आध्यात्मिक शक्ति के बल पर मैं पुनः पुनः जन्म जन्म में युग युग में अवतार लेता हूं। तो इस तरह से, क्योंकि मैं शरीर बदलता नहीं हूं इसलिए मैं भूलता नहीं हूं, क्योंकि भगवान का शरीर किस चीज का बना हुआ है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। हमारा शरीर किन चीजों का बनाया हुआ है, हड्डी का, खून का, मर्म का, इन सब चीजों का बना हुआ है, ये जीवित नहीं है, पहले से मरा हुआ है, मरने के पहले भी मरा हुआ है, मरने के बाद भी मरा हुआ रहेगा, जन्म के पहले, जन्म के बाद, मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद, यह शरीर हमेशा मृत ही रहता है। यह शरीर कभी भी जीवित नहीं रहता। केवल आत्मा अंदर होने की वजह से हमें लगता है कि शरीर जीवित है। जैसे कि यहां बाहर हमारे मंदिर के बाहर सुबह सुबह को कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। हमारे भक्त लोग कभी कहते हैं वो स्कूटर लेके आते हैं तो कुत्ता सोचता है कि ये कोई नया बड़ा कुत्ता आ गया, हमारा प्रतिद्वंदी आ गया, इस रास्ते का राजा मैं था रात भर के लिए, अब ये कौन राजा आ गया हमसे स्पर्धा लेने के लिए। तो बेचारे स्कूटर के पीछे भागते हैं, भक्तों को डर लगता है। तो इस तरह से वो कुत्ता अज्ञानी है, उसको ये नहीं मालूम कि ये स्कूटर जीवित व्यक्ति नहीं है, उसके ऊपर बैठने वाला जीवित व्यक्ति है जो अपना इंसान है, जो हर रोज सुबह शाम में देखता रहता हूं उसको, दो पैरों वाला जो चलता फिरता है। कुत्ता तो इंसान को पहचानता है लेकिन स्कूटर देके घबरा जाता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति अज्ञान में होता है, नहीं जानता है कि शरीर में कोई जान नहीं है, जब आत्मा शरीर के अंदर होती है तभी भी शरीर में जान नहीं है। जिस तरह से स्कूटर और गाड़ी में कभी भी जान नहीं होती, चाहे ड्राइवर अंदर बैठे या नहीं बैठे, गाड़ी को चलाए या न चलाए, चलते समय भी गाड़ी जीवित होती है, मरी हुई होती है। जब गाड़ी रुकी हुई होती है तब भी मरी हुई होती है। गाड़ी में पेट्रोल होता है तब भी मरा हुआ होता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है तब भी मरा हुआ होता है। उसी तरह से यह शरीर, केवल जब आत्मा शरीर के अंदर होती है तब शरीर को प्रेरित करते कुछ कार्य करने के लिए। जिस तरह से गाड़ी में बैठकर हम जब एक्सेलरेटर दबाते हैं, इंजन कुछ परिवर्तन करते हैं तो गाड़ी चलती है, उसी तरह से आत्मा के अंदर रहने से ये सब परिवर्तन होता है और ऐसा लगता है कि शरीर जीवित है, लेकिन जीवित कभी भी नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा शरीर जैसा है मेरा शरीर वैसा नहीं है, मेरे शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है, मैं पूर्ण आत्मा हूं और तुम शरीर के भीतर आत्मा हो, ये अंतर है अर्जुन तुम में और मुझ में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं सच्चिदानंद हूं, अंदर से बाहर से मैं वही हूं, लेकिन हम लोग अंदर से बाहर से नहीं है, एक नहीं है। अंदर हमारी हड्डी है, न जाने क्या क्या और है, और बाहर से कुछ और है। तो सत्य को छुपाने के लिए फिर हम नाना प्रकार के हम अपना सजाते हैं, नैन क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर शुरू से अंत तक सुंदर ही सुंदर है। इसलिए वो कहते हैं अव्यय। इसलिए हे अर्जुन तुम जान लो कि मेरे लिए कोई विस्मृति नहीं होती। तो विस्मृति का कारण यह है कि हम शरीर बदलते रहते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि इस जीवन के भीतर हम क्यों भूल जाते हैं। मृत्यु के बाद भूलना, शरीर बदलते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन जीते जी हम क्यों भूलते हैं? क्योंकि जीते जी भी हम शरीर बदल रहे हैं। जब आप यहां मंदिर में आए आज, जो शरीर साथ में लेकर आए, और जब आप घर में लौटकर जाएंगे तो आप वही शरीर लेकर नहीं जाएंगे, दूसरा ही शरीर लेकर जाएंगे। ये आपका शरीर इस 2-3 घंटे में भी बदल गया है। कितने सारे सेल्स जो हैं शरीर के मर चुके हैं, कितने नए सेल्स जो हैं उसके और जन्म ले चुके हैं। और इस तरह से हमारा शरीर हर क्षण बदलता रहता है, इसलिए हमारी विस्मृति हमेशा रहती है। तो विस्मृति को दूर करने के लिए क्या उपाय हमारे पास है? बारंबार हमें पाठ करना चाहिए, बारंबार कंठस्थ करना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए, बारंबार हरि नाम का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बारंबार भक्तों के संग में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार करें तो काफी है, नहीं हो जाएगा। बहुत जल्दी से विस्मृति आ जाएगी, क्योंकि शरीर एक हफ्ते में कितना बदल चुका होता है, मन कितना बदल चुका होता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम बार बार श्री कृष्ण और उनके पवित्र नाम और भक्तों का संग करते रहें, ताकि जो विस्मृति की स्वाभाविक एक प्रवृत्ति हमारे अंदर है उसका प्रतिकार हम कर सकें, उसका विरोध कर सकें। तो ये भगवान हमें आदेश देते हैं और भगवान ने यह सिद्ध भी किया स्थापित किया है कि वास्तव में वो विशेष है, हमारे जैसे सीमित साधारण जीव वो नहीं है, कई असाधारण कार्य भी उन्हें करके दिखाए। जब द्वारका में निवास कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में, तो एक बार सारे द्वारका के निवासी कुरुक्षेत्र गए क्योंकि वहां सूर्य ग्रहण था, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहां जाकर नाना प्रकार के धार्मिक क्रियाएं लोग करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, भगवद गीता का पहला ही श्लोक। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। तो द्वारका के सारे निवासी वहां गए और वहां पे अनेक उनके धार्मिक क्रियाएं किए। वहां वृंदावन से सारे ब्रजवासी गण भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई। वहां वसुदेव ने भी बड़े यज्ञ किए और सारे लोग आ गए वापस द्वारका। द्वारका में वसुदेव जी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे कि मैंने यज्ञ संपन्न किया, और दोनों देवकी और वसुदेव कृष्ण और बलराम के सामने आए। अब वसुदेव और देवकी तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं, लेकिन फिर भी माता पिता नहीं है, क्योंकि आखिर में भगवान का माता पिता कौन हो सकता है। भगवान ही सभी के परम माता है, परम पिता है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वसुदेव कृष्ण से कहने लगे कि अरे कृष्ण, मैं जानता हूं कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र में इतने सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि आए थे और वो तुम्हारी स्तुति कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे कि तुम परम भगवान हो, और कह रहे कि तुम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उगम स्थान हो, तो फिर मुझे भी मानना पड़ेगा। जब इतने सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा। इसलिए वसुदेव ने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान श्री कृष्ण के प्रति। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ना तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैंने ना कहा तो इसका मतलब है कि बड़े ऋषि मुनियों का मैं निरादर कर रहा हूं, तो ना तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये सब होते हुए भी जान लीजिए कि मैं आपका पुत्र हूं। तो उस समय वसुदेव भाव विभोर हो गए, चुप रह गए और कुछ बोल नहीं पाए। उस समय देवकी माता वहां पे थी, तो देवकी कहने लगे, आपने अवतार लेने के बाद बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं, और मैंने सुना है कि जब आप उज्जैन में गए थे और सांदीपनि मुनि के आश्रम में आप विद्यार्थी की लीला कर रहे थे, कृष्ण और बलराम दोनों, तो जब दक्षिणा देने का समय आ गया और आपने सांदीपनि मुनि से पूछा कि मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूं, तो उस समय सांदीपनि मुनि की पत्नी ने पूछा कि बचपन में ही बाल्य अवस्था में हमारा पुत्र का देहांत हुआ, उस पुत्र को वापस लौटाकर हमें दे दीजिए। और आप तुरंत यमराज के पास गए और यमराज से उस पुत्र को लौटाकर लेकर आए, तो इसलिए मैं भी आप दोनों की मां हूं, इसलिए मैं चाहती हूं, ये मेरी इच्छा है कि मेरे जो 6 बच्चों को कंस ने मार दिया था, उन 6 बच्चों को फिर से जीवित करके दे दो मुझे। अब वसुदेव सोच रहे होंगे अपने मन के मन में, अब ये क्या पूछ लिया देवकी माता ने, अब 6 पुत्र मर गए, अभी कहां से ले आएंगे, अब क्या है ये, जिनकी मृत्यु हो गई सो हो गई, अभी क्या उनको जीवित करना और क्या है। तो फिर भी कृष्ण भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों ने इच्छा कर दी और वो भी देवकी जैसे, तो कृष्ण भगवान ने कहा तथास्तु, तुरंत मैं निकल पड़ता हूं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको मालूम था कि ये 6 पुत्र कहां गए हैं, उनकी क्या गति हुई। सीधे गए कहां पर, किसी को मालूम है, हा? सुतल लोक में गए। इस ब्रह्मांड के 14 भुवन हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पृथ्वी लोक बीच में है, पृथ्वी लोक से नीचे है सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल इत्यादि। पृथ्वी के ऊपर है भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब भागवत में वर्णन आता है। तो पृथ्वी के नीचे एक लोक है जिसको सुतल लोक कहते हैं, और सुतल लोक के राजा कौन थे किसी को मालूम है, राजा बलि, बलि महाराज, वही बलि महाराज जो कि प्रहलाद महाराज के पोते थे और जिनके ऊपर कृपा करने के लिए यही भगवान श्री कृष्ण ने किनका रूप धारण किया था, बटु ब्रह्मचारी वामन देव का, और बलि महाराज से सब कुछ हरण कर दिया था और इस तरह से बलि महाराज के ऊपर कृपा बरसाई थी। और बलि महाराज इस बात को समझ गए कि भगवान ने सब कुछ छीन कर मेरे ऊपर कृपा की है। कई बार हम देखते हैं जब लोगों से मिलते हैं तो उनके जीवन में अगर कोई कष्ट हुआ होगा, कोई संकट हुआ होगा, कोई नुकसान हुआ होगा आर्थिक दृष्टि से, कोई पैसे खो गए होंगे, व्यवसाय में कुछ नुकसान हुआ होगा, तो पूछते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पूछते हैं ना। और इतना ही नहीं, ये भी पूछते हैं ये सब हमारे साथ नहीं क्यों हो रहा है। तो उस भक्त को हमने समझाया कि संसार की विचित्र बात यह है कि सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, ये मेरे ही साथ में क्यों हो रहा है। लेकिन सत्य क्या है, सभी के साथ हो रहा है, सभी लोग दुखी हैं। तो इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि अगर भगवान ने हमसे कुछ छीन लिया है तो भगवान ने हमको कृपा दी है। यस्याहम अनुघृणामि हरिष्ये तत् धनं शनैः, भगवान के कृपा का पहला इंस्टॉलमेंट उन्होंने दिया है, हमसे थोड़ा कुछ छीन लिया है। तो इस तरह से बलि महाराज से 1,000-2,000 रुपए लिए नहीं थे, 1,00,000-2,00,000 नहीं लिए। बलि महाराज के पास कितना धन था, सारे ब्रह्मांड के राजा थे, ब्रह्मांड के स्वर्ग लोक के देवताओं को भी दमन कर दिया था, हरा दिया था। क्योंकि जब से प्रहलाद महाराज उस पीठ पर बैठे थे तब से उस गद्दी में बैठने वाला राजा सारे ब्रह्मांड का राज कर रहा था। तो बलि महाराज के साथ के पास सारा ब्रह्मांड था और बलि और वामन देव ने 3 कदम में सब कुछ छीन लिया। लेकिन बलि महाराज के पास वो बुद्धि थी, 3रे कदम रखने के लिए अपना सर दिया, कहा कि हे प्रभु मेरे सर के ऊपर आपका 3रा कदम रखिए। तो बलि महाराज सुतल लोक में रह रहे थे क्योंकि भगवान प्रसन्न होकर बलि महाराज से कहे कि तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष लोक बनाया है, सुतल लोक, वहां जाकर रहो, वहां हर प्रकार के ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होंगे, आराम से जियो वहां पर, और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। जब बलि महाराज को पूछा था तो बलि महाराज ने पूछा, ने ये निवेदन किया कि आप हमेशा मेरे साथ में रहना। तो भगवान ने कहा मैं द्वारपाल रहूंगा, तुम्हारा चौकीदार। यह है भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्तों के चौकीदार भी बनते हैं। अगर हमारे कोई पहचान वाले आदमी हमें उनके घर का चौकीदार बनने के लिए कहे तो हम कहेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, हम तो झगड़ा करने ही निकल जाएंगे उसके साथ में, हमें चौकीदार बना रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान इतने बड़े आदमी हैं, सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े आदमी हैं। लेकिन जब बलि महाराज ने उनको पूछा कि हमारे घर के चौकीदार बनिए तो भगवान खुश हुए, अपने भक्त के लिए सेवा किया उन्होंने। जिस तरह से अर्जुन के सारथी बने, उनके ड्राइवर बने वो, और जहां अर्जुन कह रहे थे वहां रथ को ले जा रहे थे। ये है भगवान। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों को हर तरह की सेवा मदद देते रहते हैं। तो बलि महाराज के पास जाकर पहुंचे, बलि महाराज ने देखा, बलि महाराज के राज के बाहर जाके कृष्ण भगवान ने अपना शंख बजाया। कृष्ण के शंख का नाम क्या है, 5 जन्य। और भगवान ने शंख बजाया तो बलि महाराज पहचान गए, अरे ये तो श्री हरि का शंख है। तुरंत दौड़ते हुए अपने साथियों के संग में आए, भगवान का बहुत धूमधाम से स्वागत किया, प्रेम से आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की और सुंदर सुंदर स्तुतियां अर्पण की भगवान श्री कृष्ण के प्रति। भगवान मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना को सुने, स्वीकार किया और फिर बलि महाराज से कहने लगे, मेरे यहां आने का उद्देश्य यह है कि बहुत साल पहले मरीची नाम के एक प्रजापति थे, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी के एक पुत्र जिनको कि प्रजा उत्पत्ति के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की शुरुआत में थे तो कोई प्रजा नहीं थी, अकेले ब्रह्मा थे और ब्रह्मा जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप प्रजा की उत्पत्ति करके सारे ग्रह बनाओ और ग्रह में 84 लाख योनियों को बिठा दो। तो प्रजापति का ये काम था। तो ये प्रजापति मरीचि के 6 पुत्र हुए और एक बार ब्रह्मा जी के प्रति इन्होंने अपराध किया। ब्रह्मा जी को के मन में जब एक बार गलत विचार आए और गलत व्यवहार हुआ तो उस समय इन्होंने मन ही मन में सोचा कि ब्रह्मा जी ने ये गलत काम किया। वास्तव में ब्रह्मा जी तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सृष्टि करता है। तो उस समय उनके ये ब्रह्मशाप लग गया और ब्रह्मशाप लगने की वजह से उनको एक असुर के कुल में जन्म लेना पड़ा। ब्रह्मा जी तो सारे ब्रह्मांड के पहले ब्राह्मण हैं और भगवान ने उनको उपनयन संस्कार अपने बांसुरी से कराया। भगवान गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजा रहे थे तो भगवान के बांसुरी की ध्वनि जब ब्रह्मा जी के कर्णों में प्रवेश की तो कैसे प्रवेश किया? ओमकार के रूप में। और ओमकार के रूप में से अंदर जाकर बाहर जब ब्रह्मा जी ने के मुख से वाणी निकली तो गायत्री मंत्र के रूप में से बाहर आई। तो सारे ब्रह्मांड के का पहला दीक्षा का समारोह था वो अनुष्ठान कमल पुष्प के ऊपर, अकेले और कोई नहीं था, कोई पुरोहित नहीं, कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, प्रामाणिक ब्राह्मण, तो ब्रह्मशाप लग गया उनको। और किस असुर के परिवार में जन्म लिया उन्होंने? हिरण्यकश्यप के पोते बन गए और कालनेमी के पुत्र बन गए। और उस बार ये 6 पुत्र जब कालनेमी के पुत्र बने तो एक बार उन्होंने चाहा कि हम जाके तपस्या करेंगे और ब्रह्मा जी से वर मांगेंगे। तो गए। जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि जब मैं हूं इनका पोता तो भला ब्रह्मा जी के पास वरदान मांगने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? तो हिरण्यकश्यप के अंदर बहुत घमंड था तो उसने शाप दिया दोनों को, कह रहे कालनेमी तुम ही अगले जन्म में तुम्हारे पुत्रों की ही हत्या करोगे। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने शाप दिया ऐसे। और अगले जन्म में कालनेमी कौन बने? कंस बने, कृष्ण के मामा। और ये 6 बच्चे जो कालनेमी के ही बच्चे थे वो देवकी के 6 पुत्र बने। वास्तव में वो ऊपर के लोक में रहने वाले थे लेकिन शाप पड़ने की वजह से पहले हिरण्यकश्यप के पोते बने कालनेमी के पुत्र, फिर गए और देवकी के पुत्र बने। और उस समय ऐसे कर्म का खेल चलता है, ऐसे किस्मत का खेल होता है कि पूर्व जन्म के पिता ने ही बाद वाले जन्म में अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। वाकई गहनो कर्मणा गति ही, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म को कोई समझ नहीं सकता। कर्म का क्या फल होता है, कब किस कर्म के लिए कैसा फल हमें मिलता है, किस जन्म का कर्म हमें कब उसका फल मिलता है, कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे भागवत में बताया गया है राजा चित्रकेतु के कथा के संदर्भ में कि एक ही परिवार में 2 पिछले जन्म के शत्रु जन्म लेते हैं। और कभी कभी ये लोग जो पिछले जन्म में शत्रु थे पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं कभी कभी, फिर घर क्या बन जाता है? कुरुक्षेत्र बन जाता है। कभी कभी 2 शत्रु एक पिता बनता है, एक बच्चा बनता है। कभी कभी भाई बहन बनते हैं, ऐसे निकट के रिश्तेदार बनते हैं। क्यों? पहले जन्म का अकाउंट चुकाना है। एक ने दूसरे को कष्ट दिया था तो दूसरे से कष्ट भी स्वीकार करना है, तो आगे जाके किसी व्यक्ति को ऐसा पुत्र मिलेगा या ऐसा पिता मिलेगा, ऐसे पति मिलेंगे, ऐसे पत्नी मिलेंगे। एक बार एक पिता हमसे कह रहे थे बंबई में, क्योंकि लड़का उनका बड़ा दुष्ट निकला, तो बोल रहे थे कि हमने क्या किया है, ऐसा पुत्र हमको मिल गया, क्या करेंगे, क्या नसीब है हमारी। वाकई में वो लड़का उनको बहुत कष्ट दे रहा था। ऐसे अखबारों में भी हमने एक कथा पढ़ी, एक बार समाचार पढ़ा था कि एक पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर हुए थे, उन्होंने अपने बच्चे की खून कर दी, लड़के की, क्योंकि लड़का इतना दुष्ट बन गया था, इतना सरदर्द बन गया था कि बहुत साल सहन करने के बाद और सहन नहीं कर पाए, तो उनका पहले सर्विस का रिवॉल्वर था, उससे लेकर उस बच्चे को ही मार डाला। तो ऐसे हो जाता है, पिछले जन्म का शत्रु अभी आज अपने बेटा बन के आता है, पिता बन के आता है, कभी कभी भाई बहन ऐसे होता है। तो इस तरह से कंस के साथ में हुआ, पिछले जन्म के बच्चे आज इस जन्म में शत्रु बनकर आए, और कंस को लगा कि ये बच्चे जो है, छह बच्चे, ये मेरे मृत्यु का कारण हो सकते हैं, इसलिए उनको मारा। और उसके बाद में ये बच्चे फिर सुतल लोक में गए, क्योंकि उनको वरदान था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो श्री कृष्ण ये सारा इतिहास जो है ये बलि महाराज को सुनाया। तो बलि महाराज ने जब सुना कि ये कृष्ण की इच्छा है, तो तुरंत उन छह बच्चों को कृष्ण भगवान के हाथ में दे दिया, ले जाइए। और उस समय कृष्ण भगवान ने तुरंत उन छह बच्चों को लाकर द्वारका में देवकी के पास रख दिया। हालांकि उनकी उम्र हो चुकी थी काफी, क्योंकि कृष्ण भगवान तो द्वारकाधीश थे, 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई थी कृष्ण भगवान की, तो देवकी के तो और भी ज्यादा हुए होंगे। लेकिन उस समय जब इन छह बच्चों को देखा, तो देवकी के माता में वात्सल्य की भावना इतनी जागृत हो गई कि इन छह बच्चों को देवकी माता ने स्तनपान कराकर दूध पिलाया। और आचार्य समझाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने देवकी के स्तन से दूध पिया था, इसलिए देवकी के स्तनों में जो दूध था वो अमृत चरणामृत बन गया था, अमृत बन गया था वो। वास्तव में इसके पहले कि देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि तुम कृष्ण को लेकर जाओ मथुरा जेल से बाहर, उसके पहले एक बार देवकी ने दूध पिला दिया था बाल कृष्ण को। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया तो शुद्ध हो गए देवकी जी, और देवकी के गर्भ से ही तो जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो वही दूध का पान कर लिया जब इन छह बच्चों ने, तो तुरंत आध्यात्मिक बन गए, पूरी तरह से शुद्ध हो गए अंदर से बाहर से। और इसके बाद उनको ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में फिर से उनको अपना अपना स्थान मिल गया। तो इस तरह से सुंदर लीला भगवान ने की, अपने मां की इच्छा पूरी कर ली। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रखते हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई भी अद्भुत या बहुत ही विचित्र या विशेष कार्य भी करना पड़े तो भगवान कर देते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, और इनको ऐसे ही दिव्य चक्षु से पहचाना जा सकता है। जब हम भगवत गीता भक्तों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब हम भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान की सेवा करना सीखते हैं, तब धीरे धीरे से हम कृष्ण को पहचानने लगते हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि भगवत गीता के कितने सारे एडिशन हुए, प्रकाशन हुए, और विदेशों में भी, भारत में भी, लेकिन जब मैंने ये भगवत गीता यथारूप लिखा, जैसी आहे तशी, जैसा है वैसे, तो अचानक कितने सारे हजारों हजारों की संख्या में लोग भक्त बने। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को प्रस्तुत किया जैसे है वैसे, मतलब भगवत गीता का सार है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, ये अच्छी तरह से जान लो कि तुम अगर मेरा स्मरण करोगे, अगर मेरा भक्त बनोगे, मेरी उपासना करोगे, मेरी पूजा करोगे, सेवा करोगे, तो अवश्य तुम मेरे पास लौट कर आओगे। मैं सच सच तुम्हें बता रहा हूं, सत्यम ते, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कल ही प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान यहां आकर हमें झूठ नहीं बोलते, भगवान अवतार नहीं ले, झूठ लेने के लिए नहीं बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सत्यम ते, मैं सच सच बता रहा हूं हे अर्जुन कि जो मेरा भक्त बन जाता है मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यही बात हमको बताने आए हैं कि हमें उनका भक्त बनना है। ऐसा नहीं कि हमें केवल कर्म करते रहने चाहिए, नहीं, कर्म करते करते भगवान को अर्पण करते जाने चाहिए। ये सब कर्म करने के फल स्वरूप हृदय में भक्ति जागृत नहीं हुई तो उन कर्मों का मूल्य बराबर शून्य है। इसलिए कर्म करना जरूरी है लेकिन भक्ति भावना से। अगर हृदय में भक्ति नहीं हुई तो वो कर्म पूजा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हृदय में भक्ति है तो जो भी व्यक्ति करता है वो भक्ति हो जाता है, जो भी कर्म वो करेगा। तो ये है भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि मैंने गीता का सार जैसे है वैसे प्रस्तुत किया, लोगों को कहा कि आप कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की भक्ति करो, इसलिए इतने हजारों की संख्या में लोग भक्त बन गए हैं। लेकिन इतने और प्रकाशन हुए, हजारों की संख्या में अलग अलग जगह से गीता के प्रकाशन हुए, लेकिन लोग भक्त नहीं बने। गीता को पढ़ते रहे, श्लोकों को भी कंटेस्ट किया, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। भगवत गीता इसलिए बनाई गई है कि हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति प्रेम जागृत हो, और अगर गीता पढ़ के ऐसा न हो तो हमारा गीता पढ़ना व्यर्थ है, पूजा पाठ करना व्यर्थ है। ये समझने की बात है। इसीलिए हमें भक्तों के संग में आकर भजन कीर्तन करना ये बहुत बहुत जरूरी है। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत अच्छा उस समय है कि हम सब हमारी भक्ति मार्ग भक्ति को और शक्तिशाली बनाएं। ये एक अवसर है कि आप यहाँ आएं और भक्तों के संग में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। भक्ति मार्ग में सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा